एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसने काफी हलचल मचाई थी, अमेरिकन स्नाइपर। ये क्रिस काइल की अपनी कहानी है। वो एक अमेरिकी नेवी सील थे।
हाँ, और सिर्फ एक सील नहीं, उन्हें अमेरिकी मिलिट्री हिस्ट्री का शायद सबसे खतरनाक, सबसे सफल स्नाइपर माना जाता है। उनके नाम 160 से भी ज्यादा, वो भी कन्फर्म्ड किल्स दर्ज हैं।
कन्फर्म्ड मतलब जिनकी पूरी तरह पुष्टि हुई हो।
बिल्कुल, कोई अंदाजा नहीं, बाकायदा जांच के बाद।
सोचिए, 160 जाने, उनके अपने साथी तो उन्हें द लेजेंड कहते थे, लेकिन दुश्मन?
दुश्मनों के लिए वो थे अल शैतान रमादी, रमादी का शैतान। उन पर इनाम भी रखा गया था।
बाप रे, और उन्हें कई मिलिट्री सम्मान भी मिले, जैसे 2 सिल्वर स्टार, 5 ब्रॉन्ज स्टार, वो भी वीरता के लिए। ये सिर्फ मेडल्स नहीं है, ये दिखाते हैं कि उन्होंने युद्ध में कितना कुछ किया।
सही बात है, लेकिन ये किताब सिर्फ एक्शन या लड़ाई के बारे में नहीं है। ये एक आधुनिक योद्धा के मन के अंदर झांकने जैसा है। उसकी नैतिकता क्या थी, उसका कर्तव्य, देशभक्ति, अच्छे बुरे की उसकी अपनी समझ, और वो भी बहुत बेबाकी से, मतलब बिना फिल्टर के।
और शायद इसीलिए ये इतनी महत्वपूर्ण है ना? ये हमें युद्ध का वो दोहरा चेहरा दिखाती है। एक तरफ तो मैदान की सच्चाई,
और दूसरी तरफ हाँ, वो गहरा मनोवैज्ञानिक असर जो सैनिकों पर पड़ता है, जो सालों तक साथ रहता है।
हाँ, और इसीलिए ये कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये हमें युद्ध की असली कीमत समझाती है, सिर्फ वो नहीं जो दिखती है, जान माल का नुकसान।
बिल्कुल, बल्कि वो अनदेखी कीमत जो सैनिक और उनके परिवार घर लौटने के बाद चुकाते हैं, वो मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल जब वो वापस सिविलियन लाइफ में आने की कोशिश करते हैं।
तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। क्रिस काइल की कहानी, कैसे टेक्सस का एक लड़का द लेजेंड बन गया।
काइल का बचपन, जैसा आपने कहा, टेक्सस के रूरल इलाके में बीता। शिकार करना, रैंचिंग, रोडियो, ये सब उनके जीवन का हिस्सा था।
अच्छा।
और यहीं से उनकी निशानेबाजी, वो स्किल, वो पनपने लगी।
अच्छा।
और उनके पिता का एक खास फलसफा था, है ना,
जी।
वो शीप डॉग वाली बात।
हाँ, वो बहुत जरूरी है उनकी कहानी समझने के लिए। उनके पिता मानते थे कि दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। भेड़े यानी आम लोग, जो शायद थोड़े कमजोर होते हैं,
जी,
भेड़िए जो शिकार करते हैं बुराई, और फिर भेड़ पालक कुत्ते, शीप डॉग,
रक्षक।
हाँ, रक्षक, जो भेड़ों की भेड़ियों से रक्षा करते हैं। और क्रिस काइल को इसी तरह पाला गया था, एक शीप डॉग बनने के लिए। ये सोच उनके साथ हमेशा रही, उनके हर काम में झलकी।
ये दिलचस्प है। तो शुरू से ही उनका झुकाव सेना की तरफ था।
हाँ, आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन रोडियो में उन्हें एक चोट लगी, काफी गंभीर। ऐसा लगा कि वो सपना शायद
टूट गया।
ओ,
लेकिन फिर किस्मत देखिए, उन्हें अचानक, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से नेवी सील्स में भर्ती होने का मौका मिल गया, जो कि अमेरिकी सेना की सबसे एलीट, सबसे कठिन यूनिट्स में से एक है।
और ये सब किस समय हो रहा था?
ये 9/11 के आसपास की बात है। उन हमलों ने उनके अंदर वो जो देश सेवा की भावना थी, उसे और मजबूत कर दिया, एक कर्तव्य की पुकार जैसी। और उनकी ईसाई आस्था ने भी उन्हें एक नैतिक दिशा दी।
तो फिर शुरू हुई सील ट्रेनिंग, BUDS। इसका नाम ही डरावना लगता है। किताब में कैसा बताया गया है इसे?
हाँ, BUDS, बेसिक अंडरवाटर डेमोलिशन सील ट्रेनिंग। ये सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, ये हफ्तों तक चलती है, और ये इंसान को उसकी लिमिट तक धकेल देती है। नींद की कमी, बर्फीला पानी, लगातार फिजिकल और मेंटल प्रेशर।
इसमें वो हेल वीक भी होता है ना?
हाँ, हेल वीक, 5.5 दिन लगभग बिना सोए लगातार ट्रेनिंग। सोचिए जरा,
रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के।
ये तो तोड़ने के लिए ही बनी है। हाँ, तोड़ने के लिए, और फिर शायद जोड़ने के लिए भी। ये सिर्फ बॉडी नहीं बनाती, ये मेंटल टफनेस, टीम वर्क, और वो कभी हार ना मानने वाला जज्बा, वो पैदा करती है। यहाँ जो बॉन्डिंग होती है साथियों के बीच, वो भाईचारा, वो अटूट होता है।
और इसी ट्रेनिंग से निकलकर वो पहुंचे इराक।
बिल्कुल, असली परीक्षा अब शुरू हुई। शुरुआती हमला, फिर धीरे धीरे बढ़ता विद्रोह, माहौल बहुत खतरनाक था।
उन्होंने अपने पहले किल का जिक्र कैसे किया है? क्या वो इमोशनल था?
नहीं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से। वो इसे एक जरूरी काम मानते थे, अपने साथियों की, ग्राउंड ट्रूप्स की रक्षा करने के लिए, बस मिशन का हिस्सा। कोई खास भावनात्मक उथल पुथल नहीं दिखाई उसमें।
और शहरी लड़ाई वो कैसी थी? किताब क्या दिखाती है?
बहुत खौफनाक।
घर घर तलाशी लेना, गलियों में लड़ाई, घात लगाकर बैठे दुश्मन, और उनका काम एक स्नाइपर के तौर पर अक्सर होता था ऊंची इमारतों से निगरानी करना, अपनी टीम को कवर देना, ओवरवॉच मिशन, हर पल खतरा।
और इसी दौरान एक बहुत दुखद घटना हुई, उनके दोस्त मार्क ली की शहादत।
हाँ,
मार्क ली
इराक में शहीद होने वाले पहले नेवी सील, उनकी मौत का क्रिस पर बहुत गहरा असर पड़ा।
बहुत गहरा।
युद्ध अब सिर्फ ड्यूटी नहीं रहा, वो पर्सनल हो गया था।
इसका क्या असर हुआ उन पर?
उनका इरादा और पक्का हो गया, लेकिन साथ ही दुश्मन के लिए नफरत वो भी शायद बढ़ गई। वो उन्हें अक्सर सैविज यानी वहशी कहते थे।
ये सैविज शब्द का इस्तेमाल, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ गुस्सा था या दुश्मन को अमानवीय बनाना युद्ध की जरूरत थी?
किताब इसे एक तरह से एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह दिखाती है। शायद दुश्मन को कमतर समझने से या अमानवीय समझने से अपना काम करना, वो भी बिना हिचके, आसान हो जाता था। नैतिक रूप से ये बहुत जटिल है, पर युद्ध की सच्चाई शायद ऐसी ही होती है।
और इन सब के बीच हजारों मील दूर उनका परिवार, उनकी पत्नी टाया, उन पर क्या बीत रही थी?
हाँ, ये इस किताब की एक और अहम बात है। इसमें टाया काइल का नजरिया भी शामिल है। उनकी चिंता, उनका अकेलापन, हर फोन कॉल का डर, युद्ध का उनके रिश्ते पर जो असर पड़ रहा था, वो सब कुछ है। ये कहानी सिर्फ क्रिस की नहीं रहती, ये एक पूरे परिवार के संघर्ष की कहानी बन जाती है।
ठीक बात है।
युद्ध की कीमत सिर्फ वो नहीं चुकाते जो लड़ते हैं, उनके पीछे का पूरा परिवार चुकाता है।
फिर आइए उनकी तीसरी तैनाती, रमादी में। उस समय रमादी इराक का सबसे खतरनाक शहर माना जाता था, और यहीं क्रिस काइल का नाम वो बहुत बड़ा बन गया।
हाँ, यही उन्हें द लेजेंड और अल शैतान रमादी जैसे नाम मिले, और दुश्मन ने उनके सिर पर इनाम रख दिया।
स्नाइपर के तौर पर उनका रोल यहाँ कितना बड़ा था?
बहुत बड़ा। रमादी का वो कॉम्प्लेक्स अर्बन वॉरफेयर माहौल, दुश्मन कहीं भी छुपा हो सकता था। ऐसे में एक अच्छे स्नाइपर की नजरें और निशाना, वो अक्सर अमेरिकी सैनिकों की जान बचाता था, लड़ाई का रुख पलट देता था।
लेकिन यही उन्हें सबसे मुश्किल नैतिक सवालों का सामना भी करना पड़ा होगा।
बिल्कुल।
जैसे
किताब में जिक्र है कि क्या किसी ऐसी महिला या बच्चे पर गोली चलानी चाहिए जिस पर शक हो कि वो बॉम्बर है।
ओ।
काइल बताते हैं कि ये फैसले सेकेंड्स में लेने होते थे, और उनका तर्क हमेशा यही रहता था कि उनकी पहली ड्यूटी अपने साथियों की जान बचाना है। अगर कोई खतरा बन रहा है तो उसे रोकना उनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी हो।
ये सुनना भी कितना मुश्किल है। युद्ध इंसान को कहां लाकर खड़ा कर देता है? और घर पर टाया के साथ रिश्ते पर क्या असर पड़ रहा था?
तनाव बढ़ता जा रहा था। टाया का डर, अकेलापन, वो चरम पर था। किताब में टाया के शब्दों से ये साफ पता चलता है, वो चाहती थी कि क्रिस अब वापस आ जाए, हमेशा के लिए।
और क्रिस, वो क्या महसूस कर रहे थे?
वो एक कश्मकश में थे। एक तरफ परिवार, बच्चे, दूसरी तरफ युद्ध का वो नशा, वो एड्रेनलिन, वो भाईचारा, वो मिशन का मकसद। वो खुद कहते हैं कि उन्हें लड़ाई के मैदान में ज्यादा जिंदा महसूस होता था।
ये योद्धा का विरोधाभास है शायद। परिवार से प्यार है, लेकिन युद्ध भी खींचता है। आम जिंदगी शायद फीकी लगती होगी।
हाँ, कुछ ऐसा ही। चौथी तैनाती तक आते आते वो बहुत अनुभवी हो चुके थे, पर युद्ध की थकान, फिजिकल और मेंटल, वो दिखने लगी थी। हालांकि इसी तैनाती में उन्होंने अपना सबसे फेमस शॉट लिया।
अच्छा, कौन सा?
वो सदर सिटी वाला।
हाँ, वही, करीब 2100 गज यानी लगभग 1.2 माइल दूर से निशाना लगाया था।
एक मील से ज्यादा, अविश्वसनीय
है ना? लेकिन काइल इसे पर्सनल ग्लोरी की तरह नहीं देखते थे, उनके लिए एक जरूरी टैक्टिकल एक्शन था।
मिशन पहले।
लेकिन इसी तैनाती में एक और घटना हुई जिसने उन्हें शायद इस निशाने से भी ज्यादा हिला दिया।
आप रायन बिगल्स जॉब की बात कर रहे हैं?
हाँ, उनके करीबी दोस्त।
हाँ, रायन एक धमाके में बुरी तरह घायल हो गए, उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। काइल लिखते हैं कि अपने दोस्त को उस हालत में देखना, वो उनके लिए किसी भी खतरे से ज्यादा दर्दनाक था। ये दिखाता है कि वो भाईचारा उनके लिए कितना अहम था।
और इन सब अनुभवों के बाद आखिरकार उन्होंने वो फैसला लिया।
हाँ, नेवी सील्स छोड़ने का फैसला 2009 में। ये आसान नहीं था, सील होना, वो उनकी पहचान थी। लेकिन अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए उन्होंने ये कदम उठाया।
उनका मिलिट्री करियर तो खत्म हुआ, लेकिन विरासत तो बनी रही। सबसे खतरनाक स्नाइपर का रिकॉर्ड, मेडल्स, नेवी छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया?
उन्होंने दूसरे वेटरन्स की मदद करना शुरू किया। वो समझते थे कि सिविलियन लाइफ में लौटना कितना मुश्किल हो सकता है, वो मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल। लेकिन विडंबना देखिए, 2013 में किताब आने के कुछ समय बाद एक ऐसे ही वेटरन ने जिसकी वो मदद करने की कोशिश कर रहे थे उनकी हत्या कर दी।
ओह, ये तो बहुत ही दुखद अंत है, अकल्पनीय।
हाँ, बहुत दुखद।
चलिए अब थोड़ा उनके विचारों और मूल्यों पर बात करते हैं। वो जो शीप डॉग वाली मानसिकता थी, वो शायद सबसे ज्यादा हावी थी उनके नजरिए पर।
बिल्कुल, वही उनकी सोच की बुनियाद थी। वो खुद को किलर नहीं, प्रोटेक्टर मानते थे। दुनिया भेड़ियों से भरी है और उनका काम भेड़ों की, यानी निर्दोष लोगों की, अपने साथियों की रक्षा करना है। इस सोच ने उन्हें एक तरह की, कह सकते हैं, नैतिक स्पष्टता दी। वो अपना काम बिना किसी अपराध बोध या दुविधा के कर पाते थे।
लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा सिंपल नहीं है? दुनिया को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखना, दुश्मन को बस बुराई या सैवेज मान लेना।
हाँ, बाहर से देखने पर, शांत माहौल में बैठकर सोचने पर यह सिंपल लग सकता है, लेकिन किताब यह इशारा करती है कि शायद युद्ध के मैदान में, जहां हर पल जान का खतरा है, जहां फैसले सेकंडों में लेने होते हैं, वहां शायद यही सिंपल नजरिया टिके रहने के लिए जरूरी होता है।
एक तरह का मानसिक कवच।
हाँ बिल्कुल, एक मेंटल शील्ड। तब शायद आप नैतिक बारीकियों में उलझने का जोखिम नहीं उठा सकते।
ये बात समझने लायक है, लेकिन क्या ये कवच युद्ध के बाद भी काम आता है या फिर रुकावट बनता है? किताब इस पर कुछ कहती है?
सीधे तौर पर नहीं, पर घर लौटने के बाद जो उनका संघर्ष था, गुस्सा, बेचैनी, दुनिया से कटा हुआ महसूस करना, वो कहीं ना कहीं इसी मानसिकता से जुड़ा हो सकता है। जो सोच युद्ध में बचाती है, वही आम जिंदगी में शायद अलग थलग कर देती है।
और उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी? क्या वो देशभक्ति थी?
देशभक्ति तो थी ही, बहुत गहरी। अमेरिका के मिशन पर उन्हें पूरा यकीन था। लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा, जो किताब बार बार दिखाती है, वो थी अपने साथियों के लिए वफादारी और प्यार, वो सील ब्रदरहुड।
हाँ।
उनका पहला मकसद हमेशा अपने लोगों को बचाना था। मार्क ली या रियान जॉब जैसे दोस्तों को खोने का दुख, वो उनके लिए सबसे बड़ा था।
और वो विरोधाभास, परिवार और युद्ध के बीच का खिंचाव।
हाँ, वो उनके जीवन का सेंट्रल टेंशन था। पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन साथ ही युद्ध का वो एड्रेनलिन, वो मकसद की भावना, वो भाईचारा, वो भी उन्हें खींचता था। वो खुद कहते थे कि युद्ध के मैदान में ज्यादा जिंदा महसूस होता था। टाया के नजरिए से ये कश्मकश और भी उभर कर सामने आती है।
ये दिखाता है कि युद्ध का असर कितना गहरा और मल्टीलेयर्ड होता है। अगर हम उनके जीवन के सफर को देखें, तो तीन सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स कौन से थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया? पहला क्या मानेंगे आप?
मेरे ख्याल से पहला टर्निंग पॉइंट था उनका नेवी सील्स में जाना। वो भी तब जब रोडियो चोट के बाद लग रहा था कि फौजी बनने का सपना खत्म हो गया। ये बिल्कुल अनपेक्षित था। इसने एक आम टेक्सन लड़के को एक एलीट वॉरियर बनने का रास्ता दिखाया। ये पहला बड़ा बदलाव था।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा मेरे हिसाब से मार्क ली की मौत 2006 में। इसने युद्ध को उनके लिए सिर्फ एक मिशन से ज्यादा कुछ पर्सनल बना दिया। इसने उनके इरादे को और मजबूत किया, लेकिन शायद उनके नजरिए को और सख्त भी बनाया। साथियों की रक्षा का उनका प्रण और गहरा हो गया। ये एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट था।
और तीसरा?
तीसरा था नेवी छोड़ने का फैसला 2009 में। ये एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस था। उन्होंने परिवार को चुना, लेकिन द लेजेंड वाली पहचान पीछे छूट गई। अब उन्हें सिविलियन लाइफ में अपनी जगह ढूंढनी थी, जो उनके लिए एक नई तरह की लड़ाई साबित हुई, शायद उतनी ही मुश्किल।
ये तीनों मोड़ हमें उन मानवीय सबकों की तरफ ले जाते हैं जो इस कहानी में हैं। शायद सबसे बड़ा सबक वेटरन अनुभव की सच्चाई है।
बिल्कुल, सिविलियन लाइफ में लौटना कई सैनिकों के लिए एक अनदेखी जंग जैसा है। पहचान खो जाती है। आप अब वो स्पेशल वॉरियर नहीं रहे। पर्पस की कमी खलती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हाइपर विजिलेंस।
हाइपर विजिलेंस मतलब?
मतलब हर वक्त अलर्ट रहना, खतरा महसूस करना, भले ही कोई खतरा ना हो, जैसे आप अब भी युद्ध के मैदान में हो। और फिर एक ऐसी दुनिया से जुड़ने में मुश्किल जो आपके अनुभवों को समझती ही नहीं।
ये पहचान का खो जाना वाली बात बहुत अहम है। जब काइल की द लेजेंड पहचान चली गई, वो खोया हुआ महसूस करने लगे। ये दिखाता है कि लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्पस और आइडेंटिटी होना कितना जरूरी है हम सबके लिए।
और ये कहानी त्याग की पूरी तस्वीर दिखाती है। सिर्फ सेनेट का बलिदान नहीं, परिवारों का मौन बलिदान भी। टाया का अकेलापन, डर, बच्चों को अकेले पालना, फिर एक ऐसे साथी के साथ रहना जो युद्ध से बदल कर लौटा है, ये कीमत अक्सर नजरअंदाज हो जाती है।
हाँ, ये युद्ध के साइकोलॉजिकल असर को भी दिखाता है। कैसे वो चीजें जो युद्ध में सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट सोच, इमोशंस को दबाना, वही चीजें आम जिंदगी में रिश्तों में रुकावट बन सकती हैं।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है मिलिट्री और सिविलियन सोसाइटी के बीच की खाई पर, जिन्होंने सर्विस की है और जिन्होंने नहीं की, उनके बीच समझ की कितनी बड़ी दूरी हो सकती है, और ये दूरी वेटरन्स के लिए वापस समाज में घुलना मिलना और मुश्किल बना देती है।
आखिर में ये कहानी नैतिकता के सवालों से भी रूबरू कराती है, कैसे बहुत मुश्किल हालात में इंसान अपने लिए एक नैतिक ढांचा बनाता है और उसे सही ठहराता है। काइल की शीप डॉग सोच इसका एक बड़ा उदाहरण है।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत से तीन खास बातें निकालें निचोड़ के तौर पर, पहली एक भावनात्मक बात।
मेरे लिए सबसे इमोशनली स्ट्रांग बात क्रिस काइल के अंदर का वो संघर्ष है। एक तरफ परिवार के लिए गहरा प्यार और दूसरी तरफ युद्ध का वो खिंचाव, रोमांच, भाईचारा, मकसद। ये कश्मकश दिखाती है कि युद्ध का भावनात्मक बोझ सिर्फ सैनिकों पर नहीं, उनके पूरे परिवार पर कितना भारी पड़ता है।
बिल्कुल सही कहा। और दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, कोई ऐसी बात जो सोचने पे मजबूर करे।
बौद्धिक स्तर पर मुझे लगता है सबसे जरूरी बात यह है कि युद्ध जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन में एक बहुत क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट मॉरल व्यू और दुश्मन को पूरी तरह दूसरा या बुराई समझना, ये शायद सर्वाइवल और मिशन पूरा करने के लिए एक जरूरी साइकोलॉजिकल टूल बन जाता है,
चाहे वो बाहर से देखने में कितना भी सिंपल या परेशान करने वाला क्यों ना लगे।
हाँ, ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में अलग तरह से सोचना या काम करना मुमकिन भी है।
ये वाकई एक गहरा सवाल है। और तीसरी आखिरी बात, एक यूनिवर्सल सबक जो हम सब पर लागू हो।
सबसे प्रैक्टिकल और यूनिवर्सल सबक मेरे ख्याल से जीवन में एक मजबूत उद्देश्य और पहचान की जरूरत है। जब किसी की डिफाइनिंग पहचान, जैसे काइल की योद्धा वाली पहचान, खत्म हो जाती है, तो एक नई पहचान और नया उद्देश्य खोजना एक बहुत गहरा और अक्सर मुश्किल संघर्ष हो सकता है।
और ये सिर्फ सैनिकों पर लागू नहीं होता।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये किसी भी बड़े लाइफ चेंज पर लागू होता है। करियर बदलना, रिटायरमेंट, कोई भी बड़ा बदलाव, उद्देश्य की तलाश हम सबको कभी ना कभी करनी पड़ती है।
बिल्कुल, उद्देश्य की तलाश, पहचान का संकट, बदलाव से जूझना, ये अनुभव यूनिवर्सल है। क्रिस काइल की कहानी इन्हें बहुत शिद्दत से सामने लाती है।
क्रिस काइल की कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है, क्या एक समाज अपने योद्धाओं को कभी पूरी तरह समझ सकता है, खासकर तब जब वो उन्हें सबसे मुश्किल हालात में भेजता है। और क्या शीपडॉग की जरूरत सिर्फ युद्ध के मैदान में होती है या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।